So we are reading today from Sri Chaitanya Charitamrita.
तो हम आज श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं.
Manjulila chapter 7, the Lord's tour of South India.
Manjulila अध्याय 7, महाप्रभु द्वारा दक्षिण भारत की यात्रा.
Text number 66.
बयान संख्या 66.
On the board, right? 66.
जब पहले पहले मैंने रामानंद राय से बात की थी तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया था कि उनकी बातचीत तथा चेष्टाएं दिव्य और असामान्य हैं. मैंने उनका परिहास किया था क्योंकि वे वैष्णव थे. तो यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं.
Sri Chaitanya Mahaprabhu has just announced that he is going to embark on a tour of South India.
Sri Chaitanya Mahaprabhu ne abhi abhi ghoshna ki hai ki ve dakshin bharat ki yatra par jayenge.
I just returned from tour of South India.
Maharaj bata rahe hain ki wo abhi abhi wapas aaye hain dakshin bharat
ki yatra. Practically every place I went was visited by Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Aur jahan jahan bhi Chaitanya Mahaprabhu gaye the wahan pe Maharaj bhi ho.
Foot imprints of Chaitanya Mahaprabhu. And across the river, Gorubari River, there is the place where Sri Chaitanya Mahaprabhu met with Ramananda Roy. So across the river, we have got a very wonderful temple there.
और वहाँ पे महाराज ने एक मंदिर भी देखे.
As a special treat, I will be preparing a PowerPoint presentation on the tour of South India because you don't know much about. Actually, Prabhus don't know much about South India, and then they were seeing photographs like this either.
तो महाराज हम सबके लिए एक PowerPoint presentation तैयार कर रहे हैं दक्षिण भारत की यात्रा की.
About 800 photographs.
तो ये कम से कम 4 घंटे का चलचित्र बन सकता है इन फोटोग्राफ्स.
Well, that place where across the river from where Ramananda Roy met with Chaitanya Mahaprabhu today, that city is called Rajmundry.
जहाँ पे महाप्रभु रामानंद राय से मिले थे वो वहाँ पे महाराज हो के आए.
And we have a very auspicious temple there. It's right on the banks of the Rajmundry, right on the banks of the Godavari River.
Godavari नदी के तट पर वो मंदिर भी है.
I was fortunate enough to be present during the installation of the deities in the new temple about this was about 8 years ago.
और महाराज 8 साल पहले विग्रहों के संस्थापन पे भी वहाँ पे उपस्थित थे.
It's very interesting because at that time, Godavari Devi, she went on a rampage. Rampage. Rampage means flood, maha flood.
Godavari Nadi mein बाढ़ आ गई जब महाप्रभु वहां गए.
Well, the temple is located right next to the Godavari River, right on the bank of the, literally on the bank of the Godavari River, the temple is located. And there was the old temple building was down close to the river. The new temple building is higher up.
और जो नई बिल्डिंग है वो ऊपर की ऊपर है.
Naturally, they put the temple room on the first floor.
उन्होंने मंदिर कक्ष पहले फ्लोर में रखा है.
But the first floor was maybe at least as high as the rings on that column there.
और जो पहला फ्लोर है वो इस हमारे मंदिर के पहले फ्लोर जितना ऊंचा है.
But in the old temple, Lord Jagannath, Baladeva, Subhadra were in the old temple. And they wouldn't move him to the new temple, even though there was this maha flood. They wouldn't move him to the new temple until the day of the inauguration. So the Pujaris were going down to serve Lord Jagannath with the water up to their chest level. All whatever service they're doing to Lord Jagannath, the water was up to their chest. They're waiting down there and serving Lord Jagannath this prasad and everything.
So pujari jab bhagwan ki archana karne ke liye jaate the to unki chhati tak pani bhara hota tha.
And everything was so flooded that the water was as high as those rings, upper rings on this column. The water was so high.
The pani बहुत ऊंचा था, लगभग पूरा इसकी ऊंचाई जितना जितना ये पिलर है.
They had to build a special bamboo ramp going over the top of the ground floor so that the guests could reach the temple room. But it was the greatest flood and probably the greatest flood in 100 years or so. The water was extremely high.
100 साल में सबसे भयंकर बाढ़ आई थी.
And I like Jayapataka Swami's explanation.
Formerly
there was a cremation ground there, and that area was contaminated by, I don't know, maybe drug dealing was going on and other nefarious activities, you know.
तो पहले वहाँ पे एक शमशान भूमि थी, इसलिए वो एक दूषित जगह थी.
The land belonged to the government and they had donated it to ISKCON.
और उस जगह को सरकार ने ISKCON को दान में दे दिया था.
Because of the cremation grounds and so forth, so it was, the area was quite contaminated.
और क्योंकि वो एक शमशान भूमि थी इसलिए दूषित जगह थी.
So Jayapataka Swami explained.
जयपताका महाराज ने इसके ऊपर समझाया.
Mother Godavari finally came up to this unprecedented level and washed clean the entire ISKCON campus, purified the entire ISKCON campus. You can't do that just by walking around with a little jug and sprinkling some water. She came up with this unprecedented mouth flood, and the whole campus of the temple was purified personally by her.
Godavari Nadi ne ISKCON के मंदिर को पूरा धोने के लिए ये बाढ़ का प्रबंध किया.
Now ISKCON built a platform going out into the river. ISKCON has built a platform going into the river.
अब ISKCON ने एक एक प्लेटफॉर्म बनाया है उस नदी के अंदर जाने के लिए.
There the devotees installed a murti of Godavari Devi.
जहाँ पे भक्तों ने गोदावरी देवी जी की एक मूर्ति स्थापित की.
That's very nice. Every day they offer a plate of mahaprasad to her and they do puja.
हर दिन वो उनको महाप्रसाद और अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं.
So it's very auspicious. The place is very auspicious, and it's the river is so wide. The river is as big as Ganga Devi there.
तो ये बहुत ही शुभ बात है और जो नदी है वो बहुत ही बड़ी है, तकरीबन गंगा जितनी.
She is about 3 kilometers wide at that point.
वहाँ पे वो तकरीबन 3 किलोमीटर चौड़ी है.
So the spot where Ramananda Roy met with Sri Chaitanya Mahaprabhu is across the river. There's a bridge that goes across the river Right now, now there is a Gaudiamath temple located on that exact spot.
और जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी ने रामानंद राय से भेंट की थी वो नदी के उस पार है तो उससे जाने के लिए एक पुल भी है.
So Sarvabhauma Bhattacharya is admitting to Chaitanya Mahaprabhu that he used to have a smart attitude towards Ramananda Roy.
तो सार्वभौम भट्टाचार्य बता रहे हैं कि रामानंद राय के प्रति उनका व्यवहार थोड़ा आलोचनात्मक होता था.
Ramananda Roy was a politician. He was from this lower class, which Prabhupada will explain in the purport here.
रामानंद राय एक राजनीतिज्ञ थे और तथाकथित नीची जाति से थे.
So Sarvabhauma Bhattacharya was admitting that before he, the English word is imbibed, before he surrendered to Chaitanya Mahaprabhu and understood the transcendental position of Vaishnavas, that he was outright prejudiced against Ramananda Roy on account of his low birth.
तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य स्वीकार कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करने से पहले और भक्तों की महिमा को समझने से पहले उन्होंने रामानंद राय को एक नीची नजर से देखते थे क्योंकि वो तथाकथित नीची जाति से थे.
So it's very significant that Chaitanya Mahaprabhu's most intimate associates, some of them were from these low births. This sets the precedent for later Krishna consciousness being spread all over the world amongst the Malechas like myself.
तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद समाज की तथाकथित नीची जातियों से थे. तो ये बहुत जरूरी था क्योंकि भविष्य में जब ये कृष्ण हरे कृष्ण आंदोलन को पूरे जगत में प्रचार होना था तो लेखों को भी कृष्ण भक्ति देनी थी. तो महाराज बता रहे हैं कि वो भी इन्हीं में से.
Now by the mercy of Srila Prabhupada, who is the embodiment of empowerment of the mercy of Chaitanya Nitai, now virtually every race and every caste on the planet, at least someone from these different castes and races that are not acknowledged by smarter Brahmins, they have taken up Krishna consciousness.
महाराज यहाँ बता रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी कृपा से जो कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के कृपा के मूर्तिमान स्वरूप हैं, आज विश्व के हर कोने कोने में हर प्रकार की जाति के लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है.
And we see that following the tradition of Chaitanya Mahaprabhu's keeping Haridas Thakur, he was born in a Muslim family, which of course is considered outcast.
तो हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो मुख्य पार्षद हरिदास ठाकुर जी भी एक मुस्लिम परिवार से थे जिसको एक बहुत ही निम्न जाति समझा जाता है.
But Mahaprabhu made him Namacharya. So this is very significant.
महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बना दिया तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है.
And I submit that we haven't seen hardly the beginning of the full significance of why Mahaprabhu made a Muslim Namacharya, you see. We haven't yet seen, it hasn't unfolded yet. It has not yet unfolded. It's going to unfold, mark my prediction. Some of you younger devotees will see how this unfolds, the significance of the plan of Chaitanya Mahaprabhu.
तो महाप्रभु ने जब एक मुस्लिम को नामाचार्य बनाया तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा राज है जो कि अभी आगे जाके खुलासा होगा.
Because now there are billions of Muslims all over the planet.
तो यहाँ पे बहुत लाखों लाखों मुस्लिम हैं पूरे धरती पे.
And in future, many of them will take up Krishna consciousness.
और भविष्य में वो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग भी कृष्ण भक्ति स्वीकार करेंगे.
I went to this one temple which nobody's heard about very much, Anantapur.
तो महाराज एक अनंतपुर नामक मंदिर में गए थे.
It's the only temple in the world that's shaped like a chariot.
वो एकमात्र मंदिर है पूरे जगत में जो एक रथ के समान बना है.
There are big wheels on the side of the temple. I have the photographs. You'll be.
मंदिर के कोनों में बड़े-बड़े पहिए हैं.
And there are these giant horses in front. About as tall as this column, giant horses.
इस खंबे जितने ऊंचे बड़े बड़े घोड़े हैं उसके आगे.
So the temple manager told me that the Muslims, they like coming. The Muslims are coming here to that temple.
तो मंदिर के प्रबंधक ने महाराज को बताया कि बहुत सारे मुस्लिम्स वहाँ पे आना पसंद करते हैं.
They like the giant horses.
उनको बड़े-बड़े घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं.
So anyways, there will be so many Muslims will be coming forward in the future who will take up Krishna consciousness. At that time, we will very strongly feature Haridas Thakur, how it doesn't matter, because Mahaprabhu showed it his best time. Birth doesn't matter, race doesn't matter, all the caste doesn't matter, all these things don't have nothing to do with pure Krishna consciousness, with pure devotional service. All these bodily designations have nothing to do with Krishna consciousness or pure devotional service to God. Nothing.
तो महाराज बता रहे हैं कि हम भविष्य में देखेंगे कि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी कृष्ण भक्ति स्वीकार करेंगे और तब हम हरिदास ठाकुर जी का ये उदाहरण बहुत शक्ति से उनको प्रस्तुत कर सकते हैं. और जैसे कि महाप्रभु ने भी उनको रामाचार्य बनाया, वो भी मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे. तो अल्टीमेटली अंततः ये देखा बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्ति है उसका किसी भी जन्म से, जाति से, परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है.
Some time ago, I was riding on a train, and there was a newspaper sitting on the table in front of me. So, something caught my eye.
तो महाराज बता रहे हैं कि वो एक एक जगह देखा उन्होंने टेबल पे न्यूज़पेपर, तो एकदम उनकी नजर पड़ी वहाँ पे.
There was an article by an Indian historian, non-devotee.
एक अभक्त भारतीय हिस्टोरियन द्वारा एक आर्टिकल था उसमें.
Since I'm very interested in the history of India, so I had a look at this article.
और क्योंकि महाराज भारत के इतिहास में बहुत रुचि रखते हैं, इसलिए उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा.
But I was struck with wonder when this non-devotee historian spoke of the Chaitanya era and the history of India. He's a non-devotee, but he wrote of the very significant Chaitanya era in the history of India.
महाराज इस बात एक चीज देख के बहुत ही चकित हो गए कि उस इतिहासकार ने चैतन्य एरा का एक कॉलम दिया था जबकि वह अभक्त था.
अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह. He was giving full credit that Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, was dismantling the caste system. And so, as a historian, he was very, very thrilled with this. So the non-devotee historians are very happy that Chaitanya Mahaprabhu was a caste buster. They were very happy. He was very happy. So giving a very favorable review of the Chaitanya era in which he's acknowledging that Mahaprabhu was dismantling the caste system, you see?
तो उस इतिहासकार ने महाप्रभु का गुणगान किया कि उन्होंने इस जाति प्रथा को छिन्न भिन्न कर दिया. तो इससे हम देख सकते हैं कि जो इतिहासकार है वो इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं चैतन्य महाप्रभु.
So on the recommendation of Sarva Mudracharya. So now first of all, it's significant that the way you get the mercy of the Lord is through a Vaishnava, you see?
तो महाराज बता रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का तरीका है भक्तों के द्वारा, भक्तों की कृपा से प्राप्त करेंगे.
So we see that Ramananda Roy received the mercy of Chaitanya Mahaprabhu through Sarvabhauma Bhattacharya. So it is not that Ramananda Roy directly approaches the Lord. So we see that the only way to approach the Supreme Personality of Godhead is through the devotees. Again, there's another lesson here in this pastime.
तो इस लीला से एक हमें सीखने को मिलती है बात कि जैसे रामानंद राय जी को भी महाप्रभु की कृपा सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा मिली, वैसे ही हम भी भगवान की कृपा भक्तों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं.
So Sarvabhauma Bhattacharya was very strict and very truthful Brahmin.
सार्वभौम भट्टाचार्य एक बहुत ही सख्त और सत्यवादी ब्राह्मण थे.
So on the recommendation of Sarvabhauma Bhattacharya, then Mahaprabhu agreed to meet with him during his tour.
और सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर महाप्रभु ने रामानंद राय से मिलने की बात स्वीकार की।
Elsewhere in Chaitanya Charitamrita, when Mahaprabhu, it is described, when Mahaprabhu came to that area, and then he encountered, he came across Ramananda Roy, who was with a royal party.
तो चैतन्य चरितामृत में ये व्याख्यान आता है कि जब वास्तव में भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले जो कि अपने परिकरों के साथ थे।
And there was a big guy, a big shot, you know, he was like a governor, so there he was in Palakwi and hundreds of Brahmins and there must have been some soldiers also.
तो रामानंद राय भी बहुत बड़े व्यक्ति थे, उनके साथ एक पालकी थी, उनके सहयोगी ब्राह्मण थे, उनके सैनिक थे।
But he didn't have the designation king, so therefore Mahaprabhu was willing to meet with him, whereas actually King Pachaparuja Mahaprabhu was not willing to. It took a lot of endeavor and trickery by the devotees, you know, to get Mahaprabhu to meet with yes.
पर क्योंकि रामानंद राय जी के पास राजा की उपाधि नहीं थी, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे मिलना स्वीकार किया, जबकि महाराज प्रताप रुद्र से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही कठिनाई और भक्तों की चतुराई के बाद ही महाप्रभु रामानंद राय से।
Even though King Pachaparuja, all the devotees, his top men, Mahaprabhu's top men, all swore that King Pachaparuja was a Paramahansa, very Mahabhagavat, you know, very high devotee full of Krishna Prem, and not at all contaminated by his external designations. They gave all these heavy recommendations, so Mahaprabhu refused. He's got this title king, I'm not going to meet with him.
तो महाप्रभु बहुत ही बड़े बड़े भक्तों ने भी महाप्रभु को बोला कि जो राम जो महाराज प्रताप रुद्र हैं वो बहुत ही बड़े भक्त हैं, परमहंस हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो वो किसी प्रकार से दूषित नहीं है, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया ये कहकर कि उनके पास राजा की उपाधि है।
So, then the devotees were pushing, they were pressurizing Mahaprabhu to meet with him, you know.
तो भक्त महाप्रभु को ऊपर जोर डाल रहे थे कि वो महाराज प्रताप रुद्र से मिले।
Then Mahaprabhu became a little angry.
और महाप्रभु इससे थोड़े से क्रोधित हुए।
All right, you can meet with King Pachaparuja and I will leave Jagannathpuri.
महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप महाराज प्रताप रुद्र से मिलिए और मैं जगन्नाथपुरी छोड़ दूंगा।
Then the devotees became very frightened when he said like that, so they had to back off, you know.
और भक्त बहुत डर गए और फिर वो पीछे हट गए।
It's a long story. I'm not going to tell the story of the trickery of how Ramananda, how the King Pachaparuja put on a costume of a low class person and met in the garden and then massaged Mahaprabhu's lotus feet and sang sweet poems about Krishna. That was the plan that the devotees came up with, so that then Mahaprabhu softened up and embraced him, you see. So it was a scheme, you know.
तो ये बहुत बड़ी कथा है जो महाराज बता रहे हैं। ये संक्षेप में ऐसा हुआ था कि महाराज प्रताप रुद्र एक निम्न जाति के व्यक्ति के वेशभूषा में महाप्रभु के पास गए, उनके मसाज की और बाग में जाके उनसे मिले, तो महाप्रभु का हृदय पिघल गया और उन्होंने उनको गले लगा लिया।
So we have to see the importance, the historical importance of Mahaprabhu accepting so-called low-class people as intimate associates. We have to see that because it's the foundation on which Srila Prabhupada established this ISKCON movement all over the world without consideration of caste, race, and all these things. So it's strictly according to the teachings of Mahaprabhu. An example of Mahaprabhu's most perfect example, Acharya. That's how Prabhupada spread Krishna consciousness. And he met so much opposition. Still there's so much opposition from the smartest sector to ISKCON, you know.
तो हमें इस बात की महत्वता को समझना होगा कि महाप्रभु ने कितने सारे निजी जाति के लोगों को भी कृष्ण भक्ति दी, और इस केवल इस एक सिद्धांत के ऊपर प्रभुपाद जी ने पूरे के पूरे ISKCON को पूरे जगत में स्थापित किया बिना किसी जातिवाद को देखते हुए। तो यद्यपि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्मार्ट लोग अभी भी बहुत इसके प्रति विरोध करते हैं, लेकिन प्रभुपाल जी इसे बिल्कुल भी नहीं घबराए और बहुत ही उन्होंने महाप्रभु को शक्ति से इस महाप्रभु के पद चिन्हों का पालन किया।
Perhaps you know that a couple of years ago the Pandas and Jagannath Puri they made an attack on ISKCON and said you have no right to take Lord Jagannath all over the world without our permission.
शायद
they dared to say like that.
शायद आप सभी जानते होंगे कि जगन्नाथ पुरी के पांडा ने ISKCON के ऊपर हमला किया और उनको बोला कि आपको ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि भगवान जगन्नाथ जी को पूरे जगत में आप ऐसे बाहर
They were extremely angry.
वे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे।
Bhakti Purushottam Swami is originally from Orissa, so he went down there and he met with them and then he pacified them.
Bhakti Purushottam Swami Maharaj मूलभूत ओडिशा से हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ जाकर उनको शांत किया।
So we see that today there's still so much opposition to this idea of so-called low-class people being part of this ISKCON movement. But still there's opposition, but Mahaprabhu is moving forward like a tsunami and they will not succeed in their opposition.
So हम देख सकते हैं कि आज भी बहुत विरोध है इसमें कि तथा कथित निम्न जाति के लोगों को कृष्ण भक्ति क्यों दी जा रही है, लेकिन फिर भी महाप्रभु एक सुनामी की तरह आगे बढ़ रहे हैं।
Read from the second sentence. Take it sentence by sentence to purport, please.
So,
beginning of Vaishnava living according to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Purport.
तो तात्पर्य कृपया सुनिए। जो भी वैष्णव या भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता, वह
You can go to the next sentence. All of Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities were carried out on the platform of spiritual understanding.
जो भी वैष्णव या भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता, वह भौतिकवादी है। जो वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन बिताता है, वह निश्चय ही भौतिकतावादी स्तर पर नहीं होता।
Only those who are on the spiritual platform are able to understand the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
चैतन्य का अर्थ है आध्यात्मिक बल। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर होते थे।
Next, Prabhupada gives a definition of karmis. We use the word karmis all the time. Prabhupada gives a definition in the next sentence.
श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर होते थे, अतः जो आध्यात्मिक स्तर पर हैं, वे ही उनके कार्यकलापों को समझ सकते हैं। जो भौतिकतावादी व्यक्ति इन कार्यकलापों को नहीं समझ सकते, वे सामान्यतया कर्मी या ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी कोरे तर्कवादी हैं, जो केवल यही जानने में लगे रहते हैं कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। उनकी पद्धति होती है नेति नेति कहने की, यह आत्मा नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। ज्ञानी मंद बुद्धि कर्मियों से कुछ उन्नत होते हैं, क्योंकि कर्मी केवल इंद्र तृप्ति में रुचि लेते हैं। वैष्णव बनने के पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य एक मानसिक तर्कवादी अर्थात ज्ञानी थे, इसलिए वे सर्वदा वैष्णवों का मजाक उड़ाया करते थे। वैष्णव कभी भी ज्ञानियों की चिंतन पद्धति को नहीं मानता। ज्ञानी
Prabhupada is saying that the Gyanis are a little more advanced than the dull-headed Karmis, so Prabhupada is not giving much credit to the Karmis.
यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ज्ञानी कुछ उन्नत हैं कर्मियों के तुलना में, और वो कर्मियों को बिल्कुल भी श्रेय नहीं दे रहे।
So Prabhupada is giving another definition here that the Karmis are persons who are simply interested in sense gratification.
प्रभुपाद यहाँ पे कर्मियों की एक और परिभाषा दे रहे हैं कि कर्मी वो लोग हैं जो केवल इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं।
But the Kyan Prabhupada said the Gyanis are slightly better than the Karmis.
लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि ज्ञानी कुछ बेहतर होते हैं कर्मियों के तुलना में।
But a Vaishnava never agrees with the speculative system of the Gyanis, mental speculation. They're just there's a saying in the West, cerebral. Cerebral means the front lobe of the brain that is utilized in intellectual activity. So, Gyanis are excessively cerebral.
तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वैष्णव कभी भी ज्ञानियों की चिंतन पद्धति को नहीं मानता। महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क के एक भाग को सेरिब्रम बोला जाता है और ज्ञानियों को सेरिब्रल शब्द दिया जाता है क्योंकि वो इस भाग का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल कार्य करते हैं।
The next statement by Prabhupada is very important. Both the jnanis and kamis depend on direct sense perception for their imperfect knowledge.
ज्ञानी तथा कर्मी दोनों अपने अपूर्ण ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर रहते हैं। कर्मी प्रत्यक्ष अनुभूति किए बिना किसी बात को नहीं मानते और ज्ञानी केवल परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते रहते हैं। किंतु वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त ना तो प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति की विधि का ना ही मानसिक चिंतन की विधि का पालन करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास होने के कारण वे सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, या कभी कभी वे भीतर से चैतन्य गुरु के चैत्य गुरु।
So, both the jnanis and karmis depend on direct sense perception for their imperfect knowledge. So indirectly also Prabhupada describing the modern scientists, because this is their methodology. They depend on the senses testing and what they can see in the microscope, what they can see in the telescope. These machines now, even the best machines they've got, or satellites for that matter, these are all just extensions of the imperfect senses. Just give it a whack. That's the way to fix Indian electronic things.
यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कर्मी हो या ज्ञानी हो, दोनों ही प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर रहते हैं। और परोक्ष रूप से यहाँ पर प्रभुपाद आज की वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आघात करते हैं, और जैसे महाराज ने बताया कि वो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सैटेलाइट, इनकी सहायता के बिना कुछ भी नई निष्कर्ष निकालते, तो ये बिल्कुल यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात से उनको आघात कर रहे हैं कि वो केवल इन चीजों पे निर्भर रहते हैं।
So the next statement, again, Prabhupada indirectly describing the modern scientists. The karmis never agree to accept anything not directly perceived. So that's the whole basis of their so-called research, as they go, you know, they're trying to find out something they can perceive before they call it knowledge. And this, so that means that they are basically karmis.
ये जो रिसर्च वर्क है उसकी आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया है कि बिना इंद्रिय अनुभूति पे देख मिले वो किसी बात को नहीं मानते कर्मी लोग। तो जैसे कि जहाँ भी खोज होती है, रिसर्च होती है, तो जब तक उनको कुछ दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, तो वो मानते नहीं है।
So next Prabhupada says, the jnanis put forth only hypotheses. Hypotheses means theories. So we see that the modern scientists are both karmis, which means less than sudra. They're both karmis and the perverted reflection of jnanis. They're not real jnanis, but the methodology is the same, namely mental speculation, but they're not real jnanis because at least jnanis accept the existence of spirit, you know. But the modern atheists and scientists, they do not accept the existence of spirit. So jnanis, traditional jnanis are more advanced than the modern scientists because at least they accept that there's a spiritual reality of Brahman, you see, like that. And they have knowledge also, heavenly manas, these things. They know, so their knowledge is more complete. But they are still, they put forth only speculation. That's their ID tags.
तो महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि मॉडर्न जो ये वैज्ञानिक हैं, ये कर्मी भी हैं और तथाकथित ज्ञानी हैं। कर्मी हैं इसलिए वो शूद्रों से भी खराब हैं, और तथाकथित ज्ञानी इसलिए हैं क्योंकि जो पूर्व काल में ज्ञानी हुआ करते थे वो कम से कम आध्यात्मिक सच्चाई में भरोसा रखते थे, लेकिन यहाँ पर तो आजकल के वैज्ञानिक आध्यात्मिक सच्चाई में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते और वो केवल अपनी इंद्रियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए वो कर्मी हैं और वो ज्ञानी भी नहीं है।
So, skipping down now, Prabhupada says, It is said, Vaishnavara Kriya Mudra Vigyeha Na Bhujaya. Even the most learned man, depending on direct perception of knowledge, cannot understand the activities of a Vaishnava.
यहाँ पे महाराज तात्पर्य में से आगे से बता रहे हैं कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विगे ना बुझाया इंद्र ज्ञान पर निर्भर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता
So only people in this world who can understand what is a Hare Krishna devotee, in other words, are those that come forward and receive knowledge from the devotees and get Prabhupada's books. That's why we distribute Prabhupada's books. So then they can understand what is a Vaishnava.
और केवल इसीलिए हम पुस्तक वितरण करते हैं ताकि वो ज्ञान प्राप्त करें और हरे कृष्ण भक्त वास्तव में क्या है समझ सकें।
So this is why we distribute books. We have to give them an opportunity to try and understand what is a Vaishnava. So then when they come into association with devotees, they can have some appreciation of that this is Sanatan Dharma, it's transcendental, it's not Hindu and so forth.
तो हम इसीलिए पुस्तक वितरण करते हैं और उनको हम ये मौका देते हैं कि उनको वैष्णवों के संग में आए और उनको समझ सकें और फिर उनको एप्रिशिएट कर सकें।
But we see because I always do surveys when I do congregational preaching. I always do surveys and I rarely find that more than 50% of the congregation are reading in Prabhupada's books.
महाराज बता रहे हैं कि जब भी वो कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम पे जाते हैं तो वो ये सर्वे करते हैं कि कितने भक्त प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो महाराज बता रहे हैं मुश्किल से 50% भक्त ही होते हैं जो प्रभुपाद जी ग्रंथों का अध्ययन करें
So, congregational leaders like Nam Prem,
तो कॉन्ग्रीगेशन भक्तों के जो लीडर है तो उन्हें उनके हाथ मोड़ने चाहिए
That's right. Just like exactly like that. You have to twist our arms.
उनके हाथ मोड़कर.
Yes, exactly. And get them to surrender to studying Prabhupada's books, or they will never understand this movement. And if they don't understand this movement, they won't see have any motive why they should become serious. You see, they won't have a motive for becoming serious. Unless they read Prabhupada's books, they won't have a motive.
क्योंकि जब तक वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों के प्रति शरणागत नहीं होंगे तब तक वे कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये आंदोलन क्या है और फिर वो कभी गंभीर भी नहीं बन पाएंगे
They'll just come to the temple, you know, touch their hands to the threshold outside, which is the, you know, ancient practice, you know, come in, fold their hands before the deities, appreciate seeing the deities for 5 minutes and then go out and that will be the extent of their spiritual realization well, it's nice that they appreciate the beauty of the deities but it's rather shallow because they if they want to become real devotees of course they have to go much deeper than that
तो उनका आध्यात्मिक जीवन केवल इस बात तक सीमित रह जाएगा मंदिर आएंगे नीचे से हाथ लगा मंदिर के फर्श पे हाथ लगाएंगे अंदर आएंगे भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे 5 मिनट खड़े रहेंगे फिर चले जाएंगे तो लेकिन जब तक प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तब तक गहराई से वे भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे
Anyway, so we should try to appreciate the huge historic significance of how Mahaprabhu accepted Ramananda Roy, although he was from a low birth, accepted him as a confidential associate and he accepted Haridas Thakur. So this is the foundation of our Krishna consciousness movement all over the world.
तो हमको इस संवाद से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि महाप्रभु ने किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हर प्रकार की जाति से भक्तों को स्वीकार किया और यहाँ तक कि तथाकथित निम्न जातियों से नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी और अपने गुह्यतम भक्त श्रील रामानंद राय जी को स्वीकार किया तो क्योंकि यही मूलभूत सिद्धांत है जिसके ऊपर इस्कॉन पूरे जगत में हर प्रकार की जाति के भक्तों जाति के लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा है.
And it goes back even before Mahaprabhu, this tradition of preaching to your Krishna consciousness to persons who were not of the Brahmin caste. This tradition goes back, practically speaking, to the beginning of time, because the original preacher of Krishna consciousness, the original Parivajikacharya preacher is Narada Muni. So therefore we see that even that Mahaprabhu is following in the line of Narada Muni. So he built his whole movement in the spirit of Narada Muni, practically speaking.
तो महाराज बता रहे हैं कि केवल महाप्रभु ही नहीं, महाप्रभु के पहले भी यहाँ तक कि इस सृष्टि की शुरुआत से ही जरूर ये कृष्ण भक्ति जो है केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं थी. हम देखते हैं कि जो आदि परिव्राज का चार्य है नारद मुनि, उनको भी कृष्ण भक्ति ऐसे ही प्राप्त हुई थी. तो महाप्रभु ने भी नारद मुनि का ही उदाहरण पालन किया और इस पूरे के पूरे आंदोलन को स्थापित किया.
Narada Muni is very liberal. He is very liberal because he, even though he is a strict sannyasi, but he didn't mind meeting with kings and giving him instruction. As he met with King Prachinibarisa and gave him many hours of instruction, he didn't mind meeting with the king. So he's very liberal, even though he was meeting with the king, he sought him out actually to enlighten him. You see,
so
this is our tradition here, even before Mahaprabhu.
यद्यपि नारद मुनि बहुत ही कठोर सन्यासी हैं, लेकिन वो बहुत ही खुले और खुले हैं, खुले हुए हैं दिमाग में कि वो राजाओं से मिलते हैं और उनको घंटों घंटों कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं. जैसे कि नारद मुनि ने प्रचीनी भरत राजा से मिलके उनको घंटों कृष्ण भक्ति का प्रचार किया.
Any questions, comments?
कोई प्रश्न या टिप्पणी है?
Okay, thank you very much.
धन्यवाद.
जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरणामृत की जय. श्री जगन्नाथ स्वामी बलदेव सुभद्र की जय. श्री श्री राधिका कृपाण कृष्ण बलराम की जय. नित्य गौर कमलंदी हरि बोल.
Yeah.